जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माय की जय, यमुना माय की जय, ब्रज मंडल वृंदावन धाम की जय, मायापुर नवद्वीप धाम की जय, पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री को निताय की जय, जो धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्रिष्ट संबल डिवोटी, ऑल ग्रिष्ट संबल डिवोटी, ऑल ग्रिष्ट संबल डिवोटी, ऑल ग्रिष्ट, ऑल ग्रिष्ट, ऑल ग्रिष्ट श्री गुरंति गुरंग, ऑल ग्रिष्ट श्री गोपाल। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायशो अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराजभागवतम दशम स्कंद अध्याय चार श्लोक संख्या 35 10435। न तम विस्मिता शस्त्र अस्त्रान वीरथान भय संवितान हंसी अन्न आशक्त विमुखान भग्न जपान अजुद्धत। न तम विस्मित शस्त्रस्तान वीरथन भय संवृतान, वीरथान भय संवृतान अंश्यन्वाशक्त विमुखान, अंश्यन्वाशक्त विमुखान भग्नचापान अयुद्धत्य, भग्नचापान अयुद्धत। न तं विस्मित शस्त्रस्त्रान, न तं विस्मित शस्त्रस्त्रान वीरथन भय संवृतान, अंश्यन्वाशक्त विमुखान भग्न चापन अयुद्धत। न तं विस्मित शस्त्रस्त्रान वीरथन भय संवृतान, अंश्यन्वाशक्त विमुखान भग्न चापन अयुद्धत। नातं विस्मित शस्त्रस्तान वीरथन भय संवितान, अंश्यन्वाशक्त विमुखान भग्न चापन अयुद्धत।
माता जी
ना नहीं तम आप विस्मृत शस्त्र स्थान जो आपने हथियार चलाना भूल चुके हैं वीरथान रथ विहीन भय संवितान भय से भोज के हंसी भारत हो भागते हो अन्य आसक्त विमुखान जो लड़ने में अनुरक्त न रहकर कुछ अन्य कार्य में लगे रहते हैं भग्न चापान टूटे धनुषों वाले अयुद्धत अतः युद्ध न करने हुए शिलो प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तथा तत्पर करके सुनाओ अनुवाद शिलो प्रभुपाद जी के द्वारा। जब देवतागण रथवीन हो जाते हैं, जब वे अपने हथियारों का प्रयोग करना भूल जाते हैं, जब वे भयभीत रहते हैं या लड़ने के अलावा किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं, या जब अपने धनुषों के टूट जाने के कारण युद्ध करने की शक्ति खो चुके होते हैं, तो आप उनका वध नहीं करते। तात्पर्य, युद्ध करने के कुछ नियम होते हैं। जब शत्रु के पास रथ नहीं होता, वह भय के कारण युद्ध कला भूल जाता है या फिर युद्ध नहीं करना चाहता, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। कंस के मंत्री उसे स्मरण दिला रहे थे कि अपनी शक्ति के बावजूद भी वह युद्ध के नियमों से अवगत था, इसलिए उसने देवताओं को उनकी अक्षमता के कारण क्षमा कर दिया था। मंत्रियों ने कहा, किंतु प्रस्तुत आपत्ति ऐसी दया या सैन्य शिष्टता दिखाने की घड़ी नहीं रह गई। अब तो आपको हर हालत में लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस तरह मंत्रियों ने कंस को सलाह दी कि लड़ाई के परंपरागत शिष्टाचार को त्याग कर वह किसी भी मूल्य पर शत्रु को प्रताड़ित करे। मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदामायं ददाति शापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीजितपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं शकरजातं सहगणोरघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णाचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितंश्च नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत् देशकारिणे वंचाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुव एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमो नम महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववाणु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं कृत्वाचलं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्पिपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद चल रही है, दशम स्कंद का चौथा अध्याय। इस दशम स्कंद के ऊपर श्री गोपाल जी वर्णन की दशम स्कंद इज ए लविंग फेस ऑफ कृष्ण। मतलब दशम स्कंद जो है भगवान परमेश्वर भगवान का एक मुखारविंद है, जिस मुखारविंद दर्शन करने में जीव को कल्याण होता है। इज ए लविंग फेस ऑफ कृष्णा एंड एवरी वन शुड अटेंड दिस कृष्णा फेस। ये दशम स्कंध भगवान का मुखारविंद, इस मुखारविंद दर्शन में जीव को कल्याण होता है। चलिए सनातन गोस्वामी बाद बचपन में एकदम जब छोटे उम्र थे तब उन्होंने एक दिन एक सपना देखा था कि दूसरा दिन सवेरे कोई ब्राह्मण आकर मेरे को एक श्रीमद् भागवतम देके जा रहा है। जब उन्होंने सपनों देखा, उनको सपनों देखने के बाद आनंद हो गए एकदम, तुरंत उसका नींद टूट गए। सुबह उठकर नहा के धोकर आए, पूजा पाठ वगैरह की करने के बाद वो जब अपना घर का सामने तप कर रहे थे भगवान का, देखा सही जिस तरीका से उन्होंने पहला दिन रात को सपनों देखा कि एक ब्राह्मण जो कि बालक आकर उनको ये भागवत देकर गए। छोटे बालक बहुत ही सुंदर सनातन गोस्वामी का आत्मचरित उसके विश्लेषण किया उन्होंने कि छोटे बालक सनातन गोस्वामी उनको हाथ में एक छोटा रूप से ब्राह्मण आए, छोटा वो भी छोटे बालक तो देकर गए एक श्रीमद् भागवत। तो सनातन गोस्वामी को पता नहीं था कि श्रीमद् भागवत पढ़ने से क्या होता है। सनातन गोस्वामी हाथ में उसको ग्रहण की, श्री भागवत को ग्रहण करने के बाद कहने लगे कि हे परम प्रिय पूज्य ब्राह्मण, आपने मेरे को जो ग्रंथ देकर गए, इस ग्रंथ को मैं किस तरीके से मैं अध्ययन करूं। ऋषि ब्राह्मण कहने लगे ये छोटे बालक, आपको हाथ में जो मैंने ग्रंथ देकर गए, ये ग्रंथ अगर आपको पढ़ना भी नहीं आए, आप सिर्फ हाथ में रखो, देखो भगवान आपको कृपा करेंगे कि इस तरीके से आप भी पढ़ पाओ। तो उसी दिन से सनातन गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत पढ़ना चालू किया। श्रीमद् भागवत महिमा स्तोत्रम में सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि मदेक बंध मत संगीन मत बुर मनमना धन। अतः ये जो भागवत है, ये भागवत मेरा एकमात्र संगी है और ये मेरा एकमात्र बंधु है, परम मित्र है। ये भागवत सिर्फ बंधु मित्र नहीं है, ये मेरा परम गुरु है और ये मेरा महाधन और ये मेरा भाग्य स्वरूप आनंद स्वरूप, इसके लिए मैं इसको नमस्कार करता हूँ। मदानंद नमस्ते, ये मेरा परम भाग्य स्वरूप है, परम मित्र है, परम गुरु है। भक्तिविनोद ठाकुर जब डिप्टी मजिस्ट्रेट थे नदिया डिस्ट्रिक्ट का, गोंडिया डिस्ट्रिक्ट में जब डिप्टी मजिस्ट्रेट कृष्णा नगर में उनका हेड ऑफिस, तो हर दिन वो आते थे कलकत्ता से कृष्णा नगर, सैटरडे और संडे दो दिन रुक जाते थे कृष्णा नगर में। तब बहुत उन्होंने पता किया कि किस तरीका से ये सब कुछ को शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करना है। भक्तिविनोद ठाकुर अपना आत्मचरित्र में इसका विश्लेषण की कि पहले भक्तिविनोद ठाकुर थोड़ा सख्त धर्म का ऊपर प्रभावित हो गए अपना संघ का कारण बचपना में। तो बचपना में जब उन्होंने सख्त धर्म का ऊपर, क्योंकि दो प्रकार का धर्म होता है, वैष्णव धर्म और सख्त धर्म, तो संघ का कारण उन्होंने सख्त धर्म के ऊपर प्रभावित हो गए थे। भक्तिविनोद ठाकुर का जो जन्म स्थान है बीड़ नगर, उन्होंने एक दिन गए उसी जगह में, एक शिव जी का एक मंदिर था। तो शिव जी का मंदिर में जब उन्होंने पहुंच गए थे, तो शिव जी का मंदिर में जाकर तो शिव जी को दर्शन किए और शिवलिंगों को दर्शन करके आए। जय श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता ने की, श्री गौरी का की जय। तो शिवलिंग को दर्शन करके आने के बाद अपने घर में वापस लौटे और अपना चाची को पूछने लगे, अरे मैंने तो शिवलिंग को दर्शन करके आए लेकिन शिवलिंग मेरे साथ कुछ बातचीत भी नहीं किए। तो अपना चाची कहने लगे, सुनो भगवान उसी प्रकार व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं जिनको उनका ऊपर परम श्रद्धा है। बचपना में भक्तिविनोद ठाकुर ने ये बात को सुनी। ये बात सुनने के बाद भक्तिविनोद ठाकुर का मन एकदम प्रभावित हो गया। अरे मेरा चाची ने कह दिया कि जो उनका परम श्रद्धालु होते हैं उनके साथ भगवान बातचीत करते रहते, तो किस तरीके से मेरे को उनके साथ संबंध बनाना है। तब भक्तिविनोद ठाकुर सोचने लगे। इसी तरीके से सोचते सोचते उन्होंने उनका मतलब उसमें आत्मजीवनी में भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं वर्णन की कि मैंने मेरे मन में ये चिंतन ये भावना प्रकटित हो गए थे कि किस तरीके से मैंने भगवान के साथ मैंने संबंध बनाया। इसी तरीके से सोचते सोचते एक दिन उनका हाथ में भी ये भागवत ग्रंथ आ गया। किस तरीके से भागवत ग्रंथ को प्राप्त की थी, बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया शास्त्रों में कि भक्तिविनोद ठाकुर एक दिन कलना गए थे, कलना अंबिका कलना जिसका नाम है। लोकाध्यक्ष बाबू संडे लाफिस में बता रहे थे कि गौरीदास पंडित का जो कलना का शिव विग्रह है, तो इस अंबिका कलना में भक्तिविनोद ठाकुर पहुंच गए जहां पे गौरीदास पंडित का सेवित विग्रह है, गौर निताई विग्रह। ये लोकाध्यक्ष को उस दिन बताया, मैं संक्षिप्त रूप से बता देता हूं कि किस तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर श्रीमद भागवत के द्वारा आसक्ति हो गए। तो अंबिका कल्ला में उन्होंने गए दर्शन करने के लिए, उनको पहले पता हो गए थे अंबिका कल्ला एक जगह है जहां पे गौरंगा महाप्रभु का अपना हस्ताक्षर में एक पुथी है, एक ग्रंथ है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब गंगा पार होकर नाव में आकर मायापुर से नाव में आए कलना तक आके एक नाव चलाने के लिए एक द्वार होता है जिसको बैठा बोलते हैं शास्त्र में, उसी बैठा को गौरीदास पंडित को उन्होंने अर्पित कर दी और कहने लगे कि गौरीदास मैंने आपके ही अर्पित कर रहा हूं, आप इस बैठा के द्वारा सबको भव सागर आप पार कर देना। तब भक्तिविनोद ठाकुर जब कलकत्ता से कृष्णनगर आते थे हर दिन, किसी बैठक का ऊपर उन्होंने जानकारी प्राप्त की, उनको विश्वास नहीं था इसका ऊपर। अरे ऐसा करके एक बैठक को देखे गए कि कहने लगे कि इस बैठक के द्वारा, इस द्वार के द्वारा आपने भव सिंधु पार कर देंगे सबको, चलो मेरे को दर्शन करना है। तो अपना पार्श्विंद को लेकर भक्तिविनोद ठाकुर पहुंच गए थे उसी कल्याण में। किस तरीके से उन्होंने भागवत को स्वीकार किया, तो कल्याण में जाने के बाद जब उन्होंने गौर निताई को दर्शन की इसके पहले भी उन्होंने चैतन्य चरित ग्रंथ को एक मतलब एक बहुत ही पुराना ग्रंथ उनको प्राप्त की थी। तो भक्ति उन्होंने ठाकुर जब कालना में पहुंचने के बाद इस गौर नित्य विग्रह को उन्होंने दर्शन की, और दर्शन करने के बाद महाप्रभु का स्वयं हस्ताक्षर में लिखित है। आप सबको जानकारी होगा कि चार जगह में आज भी वो वर्तमान है कि जो कि महाप्रभु का अपना हस्ताक्षर में वो पुथी आज भी है, वो पुस्तक आज भी है चार जगह पे, उसमें से एक जगह है कालना। तो उन्होंने गए जगह तक देखा, देखने के बाद जब महाप्रभु का स्वहस्ताक्षर देख लिया उन्होंने, एकदम स्तंभित हो गए थे। और इसी कालना में जाकर उन्होंने जब ये गौर नित्य दर्शन की, तब उनका मौन एकदम विचलित हो गए। तो उन्होंने सोचने लगे कि मैंने इतना दिन तक मैंने जो पठन पाठन पूजा वगैरह की, इस पूजा का कुछ वैल्यू नहीं मिला मेरे को, कुछ मूल्य नहीं है मेरे सामने। इसके द्वारा, इस पूजा पाठ के द्वारा मैंने भव सागर पार नहीं हो सकता, मेरा जीवन में जो संकट है उसी संकट और आगे बढ़ते रहे। भगवान अंतर्जाम होता है, भक्तों का हृदय में जो रहता है भगवान उसको पूरा कर देते हैं। इसके लिए कहते हैं कि भावोग्राही जनार्दन। इस भावोग्राही रूप को महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। आर भक्तिविनोद ठाकुर उसी जगह में ये श्रीमद् भागवत को, श्रीमद् भागवत उनका हाथ में आ गए थे। कोई एक भक्त आकर उनको दिए कि बहुत ही एक पुराना श्रीमद् भागवत को मिले। तो उन्होंने उसी दिन से इस श्रीमद् भागवत को पाठ करना चालू किया। यही श्रीमद् भागवत ऐसा एक महा ग्रंथ है जो कि श्री प्रभुपाद जी कहते कि भगवान का मुखारविंद है श्रीमद् भागवत। जितने भी पापी व्यक्ति हो, जितने भी पाखंडी हो, अगर एक बार अगर श्रद्धा से द्वारा ये भगवान का श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जो कि भगवान से अभिन्न रहते हैं, भगवान का मुखारविंद है श्रीमद् भागवत, ये श्रीमद् भागवत अगर पापी व्यक्ति, जितने भी पाखंडी, जितने भी पाप कर्म किए, एक बार भी अगर उन्होंने हृदय से अगर उनको दर्शन करे तो अपना जीवन चरित्र को सुधार जाए। पढ़ना तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन अगर कोई अपना हृदय से, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हृदय ग्रंथि तव दर्शन, बहुत ही सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर आत्मा चरित में भागवत को वर्णन की, हृदय ग्रंथि तव दर्शन, मतलब अपना हृदय से अगर कोई व्यक्ति इस भागवत को स्वीकार करे, दर्शन भी करे, तो जीवन चरित को सुधार। भक्तिविनोद ठाकुर के समय में नदिया जिला और वर्धमान जिला दोनों एक ही था, आज जमन अलग हो गए थे। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु का सन्यास थोली जो है कटवा, जिसको बोलते हैं कटवा, उस समय नदिया डिस्ट्रिक्ट का अंदर था। नदिया और वर्धमान दोनों एक ही, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर का बाद ये नदिया और वर्धमान दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जैसे थाने मुंबई अलग हो गए, इसी तरीके से नदिया और वर्धमान अलग हो गए। भक्तिविनोद ठाकुर ये भागवत पढ़ने के बाद, जब उन्होंने भागवत पढ़ लिए, तो उन्होंने सोचने लगे कि इतना दिन तक मैंने जो पूजा पाठ धर्म का कर्म मैंने किया, ये मेरे लिए सही नहीं था। जीवन को, चरित को अगर आगे बढ़ाना है, जीवन का चरित को अगर अच्छे तरीके से विधाना है, तो श्रीमद् भागवत अध्ययन करना जरूरी होता है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाए कि सुबह श्रीमद् भागवत और शाम को श्रीमद् भागवत गीता। कोई भी पापी व्यक्ति है, मंदिर में हर समय ऐसा नहीं कि एकदम अच्छे तरीके से सब व्यक्ति आते हैं, कभी कभी पाखंडी व्यक्ति भी खड़ा हो जाते हैं मंदिर में। उसी प्रकार व्यक्ति को, जीवन को सुधारने के लिए श्रीमद् भागवत। थे लोकाध्यक्ष भूषण जी को बहुत ही अच्छे तरीके से गोरीदास पंडित को रहे थे। गोरीदास पंडित का मन में किस तरीके से भावना प्रकटित हो गई कि गौनीता उनके घर में आए तो सेवा कर रहे थे अच्छे तरीके से। एक दिन गौनीता कहा जी कि सुनो गोरीदास, हम दोनों जा रहे हैं अभी पूरी जाना है, मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ इसको। बहुत ही अच्छे से लोकाध्यक्ष वो बताए उस दिन कंधे को लाते कि देखो हम दोनों जा रहे हैं अभी। तो गोरीदास पंडित एकदम दुखी हो गए, दुखी होकर कहने लगे अरे आप दोनों को मैंने इतने दिन तक मैंने सेवा किया हूं, लेकिन आप मेरे को छोड़कर जा रहे हो, दुखी बनकर जा रहे हो, आप दोनों जा नहीं सकते हो। बता अरे कैसे होगा, मेरे को तो जाना ही है, कितना दिन तक आपका घर में रुकूं। बता ठीक है, मैंने एक प्राकृत विग्रह बनाओ, जिस दोनों विग्रह और मैं इस दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तो प्राकृत विग्रह महाप्रभु अपना हाथ में प्रकटित कराए, जैसे जो कल्ला में आज का जो विग्रह है और महाप्रभु अपना हाथ में उसको प्रकटित किया। तो दोनों विग्रह तैयार हो गए, गौर और नीता। यार गौर नीता जो आए दोनों चार हो गए। तो गौर ने उन्होंने तो भोग थाली बनाकर लेकर आए, चार थाली एक साथ लेकर आए। बता रही है तो चार एक साथ है, दो गौर और दो नीते, चार है साथ में, तो चारों को मेरे को खिलाना पड़ेगा। तो चार थाली बनाकर लेकर आए, तो चार थाली दे दिए खाने के लिए। तो चारों में बैठकर खा लिया आराम से। खाने के बाद जब टाइम हो गए जाने का, तो महाप्रभु कहने लगे सुनो मेरे को तो अभी जाना है, तो आपको किसको रखना है साथ में। बोलते ठीक है, तो एक काम करो, ये दोनों को आप रखो, प्राकृत विग्रह को रख दो साथ में, हम दोनों जा रहे हैं। तो देखिए संघ का प्राप्त होने से क्या होगा, जब दोनों को रख दिए साथ में, तब देखा कि ये दोनों एकदम चुप हो गए, वो दोनों आगे बढ़ रहे हैं। बोलता नहीं 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 आप दोनों एक साथ रहो साथ में, हम चारों को चारों चाहिए। कहते हैं नहीं 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 दोनों को आप रखो साथ में। तो बाद में दोनों को रख दिए, जो विग्रह आज भी है। तो इसी तरीका से भक्तिविनोद ठाकुर अपना जीवन चरित्र को बहुत ही सुंदर तरीका से, भक्तिविनोद ठाकुर आत्मचरित बोल के ग्रंथ है, जिसमें तात्पर्य में भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर जयश्री बोल के ग्रंथ है, जिस जयश्री ग्रंथ में इसका पर वर्णन देखिए। जैसे आज का ये भागवत श्लोक में वर्णन है कि शास्त्र में वर्णन किए वैदिक शास्त्र के हिसाब से छह प्रकार का शत्रु होता है। कौन कौन है? न पहले बहुत यह कि जो व्यक्ति अपना बल के द्वारा किसी को जहर पिलाते हैं, मतलब विष पिलाते हैं, पॉइजन वगैरह देते हैं, वो है पहला नंबर शत्रु। दूसरा शत्रु को बताया कि जो व्यक्ति अपना हाथ के द्वारा दूसरे घर को आग जलाते हैं। तीसरे बनाए कि जो व्यक्ति अपना हाथ में एकदम अस्त्र लेकर दूसरे को हत्या करने के लिए प्रयास करते हैं, वो है तीसरे प्रकार का शत्रु होता है। चौथा नंबर बताए कि जो व्यक्ति दूसरे को धन वगैरह लूट कर लेते हैं। पांचवा बताए कि जो व्यक्ति दूसरे को जमी वगैरह लूट कर लेकर आ जाते हैं। और छठवा बताए कि जो व्यक्ति दूसरे का विवाहित स्त्री कर उठा कर लेकर आ जाते हैं। इस छह प्रकार शत्रु को किसी भी तरीका से अगर आपने हत्या की, निधन कर दी, तो इसमें कोई पाप नहीं लगता है। भगवद गीता का पहला अध्याय शायद 37 के 38 नंबर श्लोक में गोपाल जी तात्पर्य में इसका विशेष है। ये कंस जो है, पहले देखिए देवकी और उसके ऊपर वसुदेव के ऊपर कितना उनका जलन था कि दैव वाणी जब उन्होंने सुन ली कि इसी तरीके से मेरे को अष्टम संतान के द्वारा मेरा निधन होगा, तब उन्होंने सोच ली कि ये देवकी और वसुदेव दोनों को मेरे को खत्म करना। व्यक्ति का परिचय होता है अपना कर्म, आपका अपना कुल के द्वारा। मैंने सवेरे मंगलारती के बाद मैंने जब देखा कि आज मेरा है, तो मैं लालगुंज प्रभु को पूछा था कि किस तरीके से इसको प्रवचन देना है। तो लालगुंज प्रभु मेरे को दो तीन पॉइंट बताए, तो मैं प्रयास करूंगा उनका मुखारविंद से मैंने जो सुना सवेरे मंगलारती के बाद उसके ऊपर कुछ बताने के लिए। अगर इसके ऊपर किसी का कुछ प्रश्न होगा, कुछ डाउट है, अगर मेरा बोलने में कुछ गलती है, जी जो भी प्रश्न है, तो लालगुंज प्रभु को पूछ सकते हैं। कि उन्होंने मेरे को सवेरे एकदम संक्षिप्त रूप से, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं था ज्यादा, तो संक्षिप्त रूप से उन्होंने मेरे को बता दिए थे कि प्रभु जी इसका ऊपर इसी तरीके से बताना है। मैंने उनको पूछा था, भले भी वो मेरे से उम्र में बहुत कम है लेकिन भक्ति में बहुत आगे है, तो मैंने उनको पूछा था कि किस तरीके से इसको बताना है, तो उन्होंने मेरे को बताया जी ये जो परंपरा धारा कुल किस तरीके से नष्ट होता है। जैसे कि कंस का पता था कि मेरे को धार्मिक युद्ध करना है, लेकिन अपना मंत्रियों के द्वारा प्रभावित होकर कंस का मन में दूसरा कुछ भावना प्रकटित हो गई। धार्मिक युद्ध एक तरीके से होता है और अधार्मिक युद्ध दूसरे तरीके से होता है। तो कंस का मन में विचार था कि मेरे को धार्मिक युद्ध करना है। संगोदोषे रंगो नष्ट, प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर एक कोटेशन बताए कि संगोदोषे रंगो नष्ट, मतलब आपका अगर संग अच्छा नहीं है, भले भी आपने बहुत पढ़ाई की हो, बहुत आपने डिग्री प्राप्त कर ली हो, लेकिन आपने संग कर रहे हो कोई टेररिस्ट के साथ, कोई एंटी सोशल के साथ, तो ये भी तो मैं टेररिस्ट, एक दिन ना एक दिन आपको टेररिस्ट बनना ही है, आपको आतंकवादी बनना है। आपने बहुत सारे पढ़ाई की है, बहुत डिग्री आपको प्राप्त कर ली है, ऐसा कोई डिग्री नहीं है जो आपको पास नहीं है, लेकिन आपका एसोसिएशन जो हो रहा है, जो जिसके साथ आप संग कर रहे हो, उसी संग हो रहा है किसके साथ ना, जिसका मन में भावना है टेररिस्ट भावना, आतंकवादी भावना, तो वन डे विल कम यू बिकम ए टेररिस्ट, एक दिन आ जाएगा जो आपको आपको टेररिस्ट बना देंगे, आतंकवादी बना देंगे। इसी तरीके से कंस का मन में भावना थी कि मेरे को धार्मिक युद्ध करना है। धार्मिक युद्ध में कुलक्षय नहीं होता है, कुलक्षय धर्म नष्टा, भगवत गीता में बताया कि कुलक्षय धर्म नष्टा सनातन धर्म प्रदेश। तो धार्मिक युद्ध में कभी कुल क्षय नहीं होता है, मतलब कुल विनष्ट नहीं हो जाते। कुल मतलब इंग्लिश में जिसको बोलते स्टेटस, अपना कुल को कभी नाश नहीं होता। तो कंस का मन में ये भावना थी कि मेरे को धार्मिक युद्ध करना है, लेकिन अपना मंत्रिया, अपना मतलब पार्षद बिंद जो है, जितने सारे उनका मिनिस्टर वगैरह थे, सब उनको दूसरा कुछ भावना बता दिए कि देखो आप इतने महान हो, देवता लोग डर रहे हैं आपको देखकर, इसके लिए भाग रहे हैं, आपको युद्ध करना चाहिए अच्छे तरीके से। तब उनका मन बिगड़ गया, तब उन्होंने सोचने लगे नहीं मेरे को कुछ दूसरा कुछ करना है। तो संघ का कारण इसी तात्पर्य में गोबा जी बताए कि संघ का कारण कुलक्षय, कुलक्षय हो जाता है, मतलब आपका जो धार्मिक परिचय रहता है, जो आपका अपना कार्य के द्वारा, अपना मनोभाव, आपका मेंटेलिटी के द्वारा आपका परिचय मिलता है। कभी कभी देखिए जो बंबई का जो बास होता है ना, उसमें लिखा रहता है कि अपना व्यवहार अपना परिचय, बहुत सारे बास में ऐसा ट्रेन में लिखा रहता है अपना व्यवहार अपना परिचय। आप जिस तरीके से व्यवहार करोगे, भले ही आपको देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपका व्यवहार सही नहीं है। क्यों व्यवहार खराब है ना, कि आपका संग सही नहीं है। वो बजी बता रहे कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एसोसिएशन। अगर आपने एसोसिएशन अच्छा किए तो योर बीएस शुड बी नाइस, आपका व्यवहार अच्छा। इफ यू एसोसिएट विद द एंटी सोशल, इफ यू एसोसिएट विद द टेररिस्ट, यू बिकम अ टेररिस्ट, एकदम क्लियर वो बजी बता रहे। तो कंस का मन में इसी तरीके से भावना था कि मेरे को धार्मिक हिसाब से युद्ध करना है। लेकिन मन उनको भटक गए क्योंकि संग अच्छा नहीं मिला था। इस संग का कारण कभी कभी व्यक्ति का मन भटक जाता है। रूपा जी एक जगह में आगे चलते हम लोग पढ़ेंगे, उसमें वर्णन भी की है कि कभी कभी भक्तों का मन भी भटक जाते हैं। कोई ऐसा कोई सिचुएशन उनका सामने आ गए, इसका तीन चार श्लोक बाद इसके तात्पर्य में गोपाल जी लिखे हैं कि कभी कभी भक्तों भी मन भटक जाता है उनको देखकर। क्यों ना ऐसा कोई सिचुएशन उनके सामने उपस्थित हो गए, खड़ा हो गए कि वो देखकर ही बिकमे पजल, उनका मन प्रभावित हो जाता है इसके द्वारा। तो इसके लिए सबसे अच्छा जरूरी होता है कि अच्छा समझ ले। भक्ति श्यांत शशि ठाकुर इस जयश्री ग्रंथ में बताया, जयश्री बोल के बहुत सुंदर उनका ग्रंथ है जिसका अभी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो रहा है, परम पूज्य भक्त चरण महाराज उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। भक्ति श्यांत शशि ठाकुर लिखे है जयश्री ग्रंथ में कि आज का दिन में सबसे जरूरी होता है कि अच्छे तरीके से संग, जिसके लिए श्री गोपाल जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ तैयार किया। यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ तैयार करने का एक ही कारण था, द पीपल दे वांट नाइस एसोसिएशन, व्यक्ति को चाहिए कि अच्छा संघ मिले। अच्छे संग बिना अब अपना चरित्र को आगे बढ़ा नहीं सकते। योर कैरेक्टर शुड बी रिमोलाइज बाय द गुड एसोसिएशन। अपना चरित्र को अगर आगे बढ़ना है तो अच्छा संग। जिस तरीके से देखिए कंस का मन में दूसरा कुछ विचार था, लेकिन अपना मंत्रियों के द्वारा जब उन्होंने इसी तरीके से प्राप्त हो गए तब उनका मन भटक गया पूरा। भक्ति शांत शशि ठाकुर इस जयश्री ग्रंथ में बताया कि अपना भक्ति जीवन में कभी कभी ऐसे संकट भी आ जाते हैं। तो भक्ति शांत शशि ठाकुर जब पहली बार लंदन गए थे तो लंदन जाने के बाद तो उसी समय तो इतना भक्त नहीं थे, तो लंदन उन्होंने पहुंच गए सुहो एक एयरपोर्ट का नाम मैंने भूल गया था उसका, तो उसी एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद उन्होंने जब पहला एक जगह में उन्होंने प्रवचन की थी जिसका नाम है केला स्ट्रीट, तो उसी जैसे ग्रंथ में इसका वर्णन किया है कि केला स्ट्रीट में जब उन्होंने गया प्रवचन करने के लिए तो जाके देखे एकदम लिमिटेड पीपल है, ज्यादा से ज्यादा कोई नहीं है सामने। तो भक्ति संत शशि ठाकुर इतना कम व्यक्ति को देखकर उनका साथ जो थे उन लोग दुखी हो गए कि देखो महाराज जी आए, इतना दूर से आए, भारत से इधर आए प्रवचन करने के लिए, लेकिन शुरुआत में इनका सामने सिर्फ 10-15 आदमी बैठे। तो भक्ति चंद्र शशि ठाकुर वो लोग को देखकर आपने साथ जो पार्षद को लेके गए थे अपना 2-3 शिष्य को कहने लगे डोंट बिकम अपसेट, आप दुखी मत रहो, इसी 15 व्यक्ति के द्वारा ही 15,000 व्यक्ति को प्रचार कर सकते। तो उसी 15 व्यक्ति को भक्ति चंद्र शशि ठाकुर ने प्रचार किए थे। 35 मिनट का प्रवचन किया भक्ति चंद्र शशि ठाकुर इस जयश्री ग्रंथ में एकदम अच्छे से उसका वर्णन किया है कि किस तरीके से मैं प्रवचन की थी कि एसोसिएशन प्राप्त करने में क्या होता है। शुद्ध त्वा के द्वारा मन निष्काम तब चरित्र सह, मन निष्काम तब, अगर आपका मन में यह भावना रहे कि मैंने मेरे लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। जब रूपा जी पहली बार अमेरिका गए तो उन्होंने पूछने लगे रिपोर्टर, अरे आपका इतना उम्र में महाराज जी स्वामी जी आप व्हाई यू केम हियर व्हाट यू वांट, तो रूपा जी कहने लगे आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू गिव समथिंग फॉर, मैंने मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ देने के लिए आया हूं, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। तो एक पत्रकार उनको पूछने लगे स्वामी जी इसी उम्र में आपने आए तो आपको आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट फ्रॉम अस। गोपाल जी कहने लगे, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई वांट टू गिव यू समथिंग व्हिच इज द रियल हैप्पीनेस फॉर योर लाइफ। मतलब मैंने कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं कुछ देने के लिए आया आपको, जो कि आपका जीवन में आप उसको सुख प्राप्त कर सकते। तो सब लोग स्तंभित हो गए कि इतना उम्र में उन्होंने आए तो क्या देने के लिए आए। तब देखा कि हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उन्हें सबको सुख प्राप्त हो रहा है। संग प्राप्त होने से क्या होता है, गोविंद कबीराज जो किसी चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग पार्षद, उनका बड़ा भाई रामचंद्र कबीराज, ये गोविंद कबीराज उनका माता का गर्भ में जब थे, उनका माता का नाम है सुंदरी, सुंदरी ठाकुरानी सर, हाँ सुंदरी ठाकुरानी। तो सुंदरी ठाकुरानी ये गोविंद कबीराज जब उनका माता का गर्भ में थे, स्वाभाविक रूप से के बच्चा प्रसव होती है कि 10 महीना 10 दिन में, लेकिन सुंदरी ठाकुरानी का गर्भ में ये गोविंद कबीराज 14 महीना हो गए, 14 महीना कवर हो गए, फिर भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। तो बहुत दुखी हो गए सुंदरी, 14 महीना के बाद ये गोविंद कबीराज बाहर आए। अरे गोविंद कबीराज का बड़ा भाई जो है जिसका नाम है रामचंद्र कबीराज, रामचंद्र कबीराज अरे गोविंद कबीराज शुरुआत में वैष्णव धर्म में नहीं थे। उनका बड़ा भाई जो है रामचंद्र कबीराज बचपन से ही श्रीनिवास आचार्य का संग प्राप्त किए थे। श्रीनिवास आचार्य का संग प्राप्त करने का कारण रामचंद्र कबीराज को एकदम धार्मिक व्यक्ति बन गए। और गोविंद कबीराज शुरुआत में कभी भी वैष्णव का ऊपर उनका कुछ भी श्रद्धा वगैरह नहीं था, लेकिन संग प्राप्त होने का कारण गोविंद कबीराज थोड़ा समय बाद एक महान वैष्णव भक्त बन गए थे। कृष्ण ना भोजिले कालो ना भोचे दुर्गति, ये गोविंद कबीराज शुरुआत में अच्छा संग प्राप्त नहीं थे, जिसके कारण उनका मन पूरा भटक गए थे। लेकिन थोड़ा समय बाद उन्होंने एक दिन देखा कि अरे रामचंद्र कबीराज मेरा बड़ा भाई और इतना आनंदित रहते हर समय, ये आनंदित होने का कारण क्या है। तो एक दिन श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कबीराज बहुत ही वार्तालाप कर रहे थे दोनों ने, तो अचानक ये गोविंद कबीराज उधर पहुंच गए। तो गोविंद कबीराज को देखकर श्रीनिवास आचार्य का मन एकदम आनंदित हो गए। कहो कहो गोविंद कहो किछु आज आमारो लईते आदि सह नाई बार। चेतन मंगल ग्रंथ में लोचनदास ठाकुर इसको वर्णन कर रहे कि जब श्रीनिवास आचार्य गोविंद कबीराज को देख लिए पहली बार, कहो कहो गोविंद कहो किछु आज हमारे आलिंगन कहो तब आज, कहने लगे अरे गोविंद मैं आपको मिलने के लिए आया। तो गोविंद कबीराज कहते कि अरे मोरो श्रद्धा नहीं किछु तुमा पति यार। चेतन मंगल ग्रंथ में लोचनदास ठाकुर इसको मोरो श्रद्धा नहीं किछु तुमा किछु आर, मेरा आपको पर मेरा कोई श्रद्धा नहीं, आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट रिगार्डिंग यू, मेरे को कोई श्रद्धा नहीं है आपको। तो श्रीनिवास आचार्य ने ही बिकम लेफ्ट, मतलब उन्होंने आलिंगन कर ली तुरंत। ये जो थोड़ा समय के लिए श्रीनिवास आचार्य का संग प्राप्त की थी गोविंद कबीराज ने, नहीं तो उन्होंने इतना दिन तक सोचा कि मैं जिस तरीके से अपना जीवन को विदा रहा हूं इसी जीवन में मेरे को मैं सुख प्राप्त, लेकिन थोड़ा समय के लिए आनंद मिलने के बाद मेरा जीवन में दुख ही प्राप्त हो जाता है। तब उन्होंने सोचने लगे कि यदि देखो मेरा बड़ा भाई रामचंद्र कबीराज कितना आनंद दी जाते हर समय, चंद्र पुलकित छय तब छले, मेरा बड़ा भाई देखो हर समय आनंदित रहते लेकिन मेरे को थोड़ा समय के लिए आनंद मिलता फिर भी मैं दुखी बन जाता हूँ. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसका पीछे कारण क्या है? तब एक दिन गोविंद कविराज अपना बड़ा भाई को पूछने लगे, अरे आप हर समय आनंदित रहते हो, पुलकित रहते हो, लेकिन मेरा हर समय मेरे को दुखी रहता है, मेरा मन में कभी सुख नहीं है. रामचंद्र कविराज पूछने लगे, यू शुड बी एसोसिएट, मैंने अपने अच्छा आप संग करो, संग प्राप्त करो तब संग त्याग. देखिए दो शब्द यूज किए, संग प्राप्त करो तब संग त्याग. चेतन महाप्रभु ग्रंथ में लोचनदास ठाकुर इस दो शब्द को व्यवहार किए, संग प्राप्त करो तब संग त्याग. मतलब एक तरीके बोले कि आप संग को प्राप्त करो, दूसरे तरीके से बोले संग को त्याग दे. इसके ऊपर भक्तिवन ठाकुर एक भजन लिखे कि जार मुखे भाई होरी कथा नाई, तार मुखो पाने चेहो ना, जाके देखे तुम्ही भूले जाबे होरी तारे काछे. ऐसा व्यक्ति को आप संग प्राप्त करो जिसको देखने से आपको होरी का स्मरण आता है. जारो मुखो पाने तुम्ही चेहो, आज जिनको देखने से आपको होरी को आप भूल जाते हो उसको कभी देखने. इस भजन का ऊपर भक्तिवन ठाकुर ने मतलब बहुत ही सुंदर एक टीका बताया. पोपा जी भी इसके ऊपर बहुत ही सुंदर एक टीका है, जार मुखे भाई होरी कथा ना तारो मुखो पाने चेहो, जाके देखे तुम्ही भूले जाबे होरी तारे काछे. ऐसा व्यक्ति को संग करना है जिसको संग करने से आपको होरी का स्मरण कर सकते हो, आज जिसको संग करने से आप होरी को भूल जाते हो उसको संग नहीं करना. इसके लिए लोचन दास ठाकुर वर्णन की कि संग त्यागो संग तरो, मतलब एक तरीके से आप संग को त्याग दे दो और दूसरे तरीके से उसको संग करो. किसको संग करना है? जिसको संग करने में आपको होरी का बारे स्मरण होता है, आज जिसको संग करने में आप होरी को विस्मित हो जाते, मतलब भूल जाते हो आप, उसको आपको त्याग देना है. गोविंद कविराज शुरुआत में जिनका आज आविर्भाव तिथि है, तो ये गोविंद कविराज शुरुआत में एकदम बिल्कुल वैष्णव धर्म का अगेंस्ट में थे. शुरू से भी कभी भी कोई भी वैष्णव को उनको कुछ श्रद्धा भी नहीं. वैष्णव स्तोत्रमाला बोल के ग्रंथ है जिसमें इसका वर्णन किए है कि नरेंद्र चतुर्थी ठाकुर भी इसके ऊपर वर्णन है कि गोविंद कविराज शुरुआत में कभी भी किसी के साथ कोई वैष्णव धर्म दीक्षित वाले के साथ भी कभी भी उसको उन्होंने किसी को कभी रिस्पेक्ट भी नहीं दिए थे. लेकिन जब उनको श्रीनिवास आचार्य को संग प्राप्त किए, एक बार उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को संग प्राप्त किए, श्रीनिवास आचार्य उनको आलिंगन कर लिए, तब उनका जीवन एकदम सुधर गया. कहने लगी कि मैंने इतना दिन तक जो कर्म मैंने किया हूं उसी कर्म फल मेरे को भुगना पड़ता है और उसी कर्म फल के द्वारा मेरे को जीवन में कभी आनंद नहीं मिले. इस प्रसंग में श्री प्रभुपाद जी भी वर्णन किए तात्पर्य में कि भगवद्गीता में पहला अध्याय इसका है कि कभी कभी जीवन में जब दुख आ जाते हैं तब वो सोचना चाहिए कि हमारा पूर्व जीवन का कर्म फल है, ऐसा कुछ कर्म मैंने किया था जिसके कारण मेरे को जीवन. गोविंद कविराज के ऊपर भक्ति सरस्वती ठाकुर जैसे ग्रंथ में वर्णन किए कि गोविंद कविराज शुरुआत में इतना अच्छा परिवार में उसका जन्म हुआ था. उनका पिताजी थे चिरंजीव सेन जो कि एकदम धार्मिक व्यक्ति है, माता सुंदरी जो कि धार्मिक. सुंदरी का चरित्र विश्लेषण किए है नरेंद्र चतुर्थी ठाकुर जिसमें वर्णन किए कि माता सुंदरी सुबह से रात तक सुबह उठकर पहले नहा के धोकर पैसे तुलसी महारानी को प्रणाम करते थे. और ऐसा परिवार में जन्म होने के बाद भी ये गोविंद कविराज कभी अच्छा संग को प्राप्त नहीं किए, बार बार घूमते रहते थे. लेकिन जब श्रीनिवास आचार्य को संग प्राप्त किए उनका जीवन सुधर गया. तो लोचनदास ठाकुर वर्णन के चेतन में ग्रंथ में কি গোবিন্দ কবিরাজের চরিত্র বিশ্লেষণে তব হইতে কৃপা তব মাহিমাহি তলে, মানে গোবিন্দ কবিরাজের চরিত্র এইসা এক চরিত্র তা জিনকা চরিত্র শূন্য মে ব্যক্তিকা উপর ঘৃণা আ যাবে কিসি কাজ, লেকিন যে উনকো আচ্ছা সঙ্গ কর দিয়েছে তা আপনার জীবন কোন সুধার ইসি কা সংকার থাকা। इसके देखिए कि कंस का मन में दूसरा कुछ भावना थी कि मेरे को धार्मिक युद्ध करना है, लेकिन अपना मंत्री अपना मिनिस्टर वगैरह जो पार्षद बिंदु था उनके दूसरा कुछ भावना प्रकटित कर कि अरे आप महान हो, आप इतने महान होकर आपको डरना नहीं चाहिए, कभी आपको कम है अब युद्ध करने का, आप पर जितने सारे शत्रु सबको निधन कर देने का, वो लोग को भयभीत नहीं होना चाहिए, आप आपको देखकर वो लोग को भयभीत है, इसके लिए वो लोग भाग रहे जगह छोड़कर, इसी समय आप उसको एक समय है आपको इसी समय आप निधन कर सकते, इसको कहते कि संघ का संघ का ऊपर हाथ चिपकता है, जिसके लिए प्रभुपाद जी एकदम हर जगह में कहते कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एसोसिएशन, एसोसिएशन अगर अच्छा नहीं है तो आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते, कभी बुरा एसोसिएशन मेरे को मिले तो मेरा चरित्र भी उसी तरीके से, ओपा जी जब अमेरिका गए थे तो ऐसा ऐसा व्यक्ति को उनको मिले थे जो कि सुबह से रात तक सबसे दारू पीने वाले हैं, तो उसी प्रकार व्यक्ति को ओपा जी ने सुधार दिया। कोई एक पत्रकार उनको पूछे स्वामी जी कैसे आपने ये जीवन चरित्र लोग को बदला दिए, हाउ वी कैन चेंज दैट लाइफ एक्टिविटी, आपने कैसे उसके जीवन चरित्र को चेंज कर दिया आपने, तो पति ने एक ही शब्द बताया बाय द गुड एसोसिएशन, तो हमारा जीवन को इसी तरीके से अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले होता है कि एसोसिएशन को अच्छा रखना, जिसके लिए प्रभुपाद जी ने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ करना, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ स्थापन करने का ये उद्देश्य नहीं है कि पीपल आर कमिंग टू वॉच द डीटीज एंड टेक प्रसाद में ना, नो, उन्होंने इसके लिए बनाया था कि पीपल आर कमिंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी, दिस इज नॉट लाइक ए टेम्पल, दिस इज ए वन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, पीपल आर कमिंग टू द इंस्टीट्यूशन फॉर व्हाट, टू लर्न समथिंग, व्यक्ति स्कूल में जाता है कॉलेज में जाता है किसके लिए, कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, दिस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कंसर्न आर बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूट, ये एक शिक्षा प्रतिष्ठान है जिसके आकर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा शिक्षा, जिस शिक्षा के द्वारा आपने जीवन को और सुधार सकते हैं, नहीं तो अगर आपको जीवन को अपना नहीं सुधारे तो क्यों टीका में टेबल दे, जो कि प्रभुपाद जी ने बताया कि आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत अपने डिग्री प्राप्त कर लिए, लेकिन आपका जो एसोसिएशन है ना वो टेररिस्ट के साथ, तो वन डे विल कम यू बिकम ए टेररिस्ट, एक दिन आ जाएगा जिस दिन आप भी टेररिस्ट बन जाओ, आज का दिन में जितना टेररिस्ट, जो कि देखो प्रभुपाद जी ने इतना साल पहले बताया था लेकिन आज वही चल रहा है, जितना टेररिस्ट जितना एंटी सोशल आप देखते रहते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड जो है किस धारा से आ रहा है, बैकग्राउंड है कि उन्होंने संघ के थे एंटी सोशल, उन्होंने संघ के थे टेररिस्ट, इसके लिए गोपी में ठाकुर गाते हैं कि जार मुखे भाई होरी कथा ना तारो मुखो पाने चियो ना, जाके देखे तुम्ही भूले जावे होरी तारे काटे, तो हमारा जीवन में पालवियो जागतिक जीवन हो कि गोपी जीवन एसोसिएशन सबसे बड़ा होता है, इस एसोसिएशन के द्वारा ही व्यक्ति अपना जीवन को सुधार सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कृष्ण ना भजिले हवे दुख, गोविंद कविराज एकदम लास्ट में बताए कृष्ण ना भजिले हवे तुम्हार दुर्गति, लोचनदास ठाकुर गोविंद कविराज को पढ़े एकदम लास्ट श्लोक में बताया कि गोविंद कविराज एकदम जब जीवन का अंतिम मुहूर्त आ गए, अंतिम मुहूर्त में अपने पार्षद लोग सब आए सामने, इसी पार्षद लोग को सामने बैठा कर तो उन्होंने पूछने लगे कि देखो मैंने तो जीवन भर बहुत कुछ किया लेकिन अंतिम शिक्षा मैंने यही प्राप्त किया, कृष्ण ना भोजिले हवे मोर दुर्गति। अगर भगवान को मैंने नहीं भजना की तो जीवन दुर्गतिपूर्ण होता है, मतलब हमारा जीवन करप्टेड हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बंधुरा श्रीमद्भागवतम की शील प्रभुपाद की गौर प्रेम मंदिर। वंशा कल्पतरुहस्य कृपा सिंधु वैवच पीता पावन विष्णु।